भगवतामृत रामेण सार्धम मथुरा प्रणीते स्वफल किना वही अनुरक्त चित्ता श्लोक का पाठ किया था। इसलिए राम के साथ मैं अक्रूर के द्वारा मथुरा लाए जाने पर, तो इसमें अक्रूर का जो नाम दिया गया और राम का जो नाम दिया गया उसका तात्पर्य क्या है, बोलिए। तो प्रथम अक्रूर का संबंध में अक्रूर का नाम किस लिए लिया?
इसलिए दिया था महाराज जी कि गोपियों के तड़पते हुए को देखते हुए भी उनको दया नहीं आई और सारे ब्रजवासियों को वो ऐसे छटपटाते हुए देखते हुए कृष्ण को और बलराम को वहां से ले गए, लेकिन उनका ये अपराध शायद इसलिए क्षम्य है क्योंकि वो अपने वंश के और
क्या बाकी रहा
एक कारण बताया
बोलो। जी को भी इसी ने उत्तेजित किया और उसके द्वारा हमें भी कराया और अपने भी, हमारी जाने की एकदम इच्छा नहीं थी। अच्छा, बलदेव जी के लिए क्या बोलो? बोलो बलदेव, राम नहीं पड़ेगा ये, इसलिए वहीं पर अपेक्षा कर रहे हैं ये कब आएगा कब आएगा। ये ठीक, ददृशु सुखाय। अब इसका ठाकुर जी की तरफ में पीठ मत करना, इधर से ऐसे बैठ, ऐसे जैसे ये बैठी इधर से। और अब इसमें विचार है, एक है बिगाढ़ भावेन, बिगाढ़ भाव, भाव के गाढ़े होने पर उसका नाम क्या हो जाता है? महाभाव, महाभाव, महाभाव। और यदि गाढ़ा हो जाएगा तो रूढ़ भाव, और यदि अधिरूढ़ में फिर मोदन और मोहन। ये भाव गोपियों के भावे न कब वियोगे, वियोग में न ददृशु सुखाय तीव्र आधयो अन्यम न ददृशु सुखाय। हमारे मिलन के अतिरिक्त गोपियों को उस समय में अत्यंत गाढ़े भाव में महाभाव की अवस्था में उनको और कुछ नहीं सूझता था, कृष्ण का मिलन ही उनको सुखी कर सकता था और नहीं कुछ। ददृशु माने देखना, और कुछ देखा ही नहीं, कृष्ण के मिलन में ही उनका सुख। इसलिए तीव्र आधयो माने तीव्र विरह ताप अनुभव कर रही थी। अब इसका बहुत सा अर्थ दिया है, इसको समझने के लिए ये समझना होगा भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक है प्रकट लीला एक है अप्रकट लीला। गोलोक वृंदावन में नित्य जो भगवान की लीलाएं चलती हैं और उसको साधारण भाव अवस्था तक पहुंचा हुआ व्यक्ति भी नहीं देख सकता है, इसको देख सकता है कौन? नित्य सिद्ध अवस्था में पहुंचे, उसको वस्तु की सिद्धि हो जाए और गोपियों का उनको संग प्राप्त हो, तब कहीं जाकर के उसको देख सकता है, इसके पहले नहीं। जैसे गोप कुमार जी ने देखा अपना बतलाया है, तो इस जगत में वो लीला प्रकटित नहीं है, इस जगत में केवल वो लीला कुछ दिनों के लिए, कितने के लिए? केवल 10 वर्ष के लिए, ब्रज की लीला 10-12 वर्ष तक के लिए, 10 वर्ष भी मत कहो, कहो केवल 2-3-4 वर्ष की कैशोर लीला, ये इतने दिल के लिए इस जगत में प्रकटित होती है। इसके साथ साथ में ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी और लीलाएं सब मिलाकर के 125 वर्ष तक इस जगत में प्रकट रहती है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ के लिए वो अप्रकट लीला हो जाती है, किंतु वहां पर नित्य वो लीला चलती रहती है। वहां पर इसका ये सब चीजें होती हैं, वहां होती हैं। ये कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं, उनको विरह होता है, प्रेम वैचित्र्य इत्यादि होता है, उनको प्रेम वैचित्र्य में वो क्या है, उद्धव के साथ में हुआ चित्रजल्प इत्यादि भी वहां होते हैं, किंतु गोपियों के साथ में वियोग नहीं, वियोग में ही वो मिलन और वियोग दोनों बातें होती हैं। कहीं कहीं के लिए 3 महीने के लिए एक प्रकोष्ठ में वो भी दिखलाया जाता है, एक प्रकोष्ठ ऐसा है जिसमें वो है, सब प्रकाशों में नहीं। तो इस जगत में केवल वो लीला कुछ दिनों के लिए प्रकट होती है, उन दोनों लीलाओं में कोई भेद नहीं है। इसको साधारण उस समय में प्रकट रहने वाला कोई साधक भी इसको दर्शन कर सकता है, कोई साधक दर्शन कर सकता है इस लीला, किंतु जब तक वस्तु सिद्धि न हो तब तक उस अप्रकट लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, नित्य सिद्ध शरीर उसको मिल जाएगा, प्रेम की सिद्धि होगी, तब वहां पर जाकर के देखेगा। और इस गोकुल में जो ब्रज का दर्शन है, ये साधक जो भावावस्था में भी है उसको भी वो कुछ कुछ उपलब्धि कर सकते हैं, और लोग भी देख सकते हैं, बद्ध जीव भी देख सकते हैं, किंतु समझेंगे नहीं, उनको माइक व्यापार समझेंगे। तो गोपियों का जैसा उस जगत में है, इस जगत में वो लीला प्रकट होने पर भी प्रकट काल में, यहां पर जैसे गोपियों को ये देखा जाता है, ब्रजवासियों को ये देखा जाता है कि कृष्ण से उनका मिलन नहीं हुआ अंत तक, यद्यपि शास्त्र में कुछ पद्म पुराण में मिलने का कुछ है, किंतु केवल 2 महीने के लिए, दंत प्रकट का वध करके, और जब कृष्ण यहां पर वध किया दातिहा ग्राम में, दातिहा ग्राम में वध किया, और वध करने के बाद में जमुना को पार किया और नंद ब्रज में वहां पर उपस्थित हुए, उनके साथ में वही सब क्रीड़ाएं की, और 2 महीने के बाद में गोलोक में उन सब को लेकर के पहुंच गए, और मथुरा और द्वारका का प्रकाश का जो द्वारकाधीश हैं, फिर वहां से प्रकट होकर के और फिर वहां पर पहुंच गए द्वारकाधीश, और बाकी सब लीलाएं वहां जाकर। तो यहां पर गोपियों को जो तीव्र व्याधि हुई, उद्धव को भेजा, फिर बलदेव जी को भेजा, किंतु श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्र में ये वर्णन नहीं है कि कृष्ण गोपियों से मिले, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक उनका यह भाव दूर नहीं होगा। बल्कि ये देखा जाता है कि उद्धव के संदेश से, बलदेव जी के संदेश से, उनकी विरह अग्नि का ताप जरा जो कम हुआ रहता है और वो बढ़ जाता है। जब उन्होंने देखा जब कृष्ण नहीं आएंगे तो उनके जीवित रहने की जो आशा की एक क्षीण रेखा थी वो भी समाप्त हो गई। उद्धव के आने से, संतन आने से, ऊपर से श्रीमद् भागवत में ये वर्णन पाया जाता है कि उनको कुछ संतना मिली, किंतु हमारे टीकाकारों ने महाप्रभु के अनुगत जो टीकाएं की हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, उन्होंने वो दिखलाया नहीं, नहीं हुआ और बढ़ गया, बल्कि जीवित रहने की आशा थी ये भी त्याग कर दिया, किंतु अप्रकट लीला में ये सब चीजें नहीं है। वहां पर नित्य मिलन है, वहां पर दोनों प्रकट और अप्रकट लीलाएं दोनों एक हो गई है, इसी को ये दिखला रहे हैं। वहां पर वियोग होता है, क्षणिक काल में क्या हो जाता है, कृष्ण मिलन मिल जाते हैं, गोचारण करके आ जाते हैं, या श्रीमती जी को मान हो जाता है, या कृष्ण को ही मान हो गया, और मान के बाद में फिर मिल जाते हैं, फिर सुखाय ददृशी सुखाय कहां अप्रकट लीला में। किंतु इस प्रकट लीला में जो ब्रज में अभी हाल में जो गई है, इसमें नदृशु क्या सुखाय, ददृशु माने क्या, ददृशु माने होता अद्भुत काल की क्रिया, ददृशु नहीं देखा, मैत्रेय से ये कह रहे हैं कृष्ण, तो ये देखा नहीं, किंतु ये केवल प्रकट लीला के लिए कह रहे हैं। अप्रकट लीला में साथ ही साथ उसी समय में उनका मिलन है, थोड़ी देर के बाद ही में कृष्ण का मिलन, और ददृशु सुखाय, सुखा सुख को देखा। अब इसी के व्याख्या सनातन गोस्वामी जी कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझने की चेष्टा कर, एक दो आदमी समझेंगे यही यथेष्ट है। रामेण सार्धम कहने का तात्पर्य कल मैंने बतलाया, दो तीन जो बतलाया अभी अभी फिर से बतलाया, ये भी कारण दिख रहा है, यदि राम नहीं आते तब भी मैं नहीं आता, या राम यदि हमारे साथ नहीं आते तब भी मैं दो दिन के बाद में लौट आता कंस के मार करके, ये भी, और राम नहीं जाते तो हो सकता मैं भी नहीं जाता, ये राम क्यों आया, राम को आने की जरूरत नहीं थी, ये भी तात्पर्य। मैंने ये बहुत प्रकार के जो अर्थ बतला रहे हैं, एक ही साथ नहीं संगति होगी, या तो ये अर्थ या ये अर्थ या ये अर्थ, सभी अर्थ उसमें होंगे। जो जैसा अधिकारी होगा अधिकारी के लिए तरह तरह का अर्थ है, एक अधिकारी के लिए नहीं है, बड़े कष्ट की बात है, ओहो की कष्ट मेरे मुझ में अत्यंत सुदृढ़ रूप से अनुरक्त जो गोपियां हैं, मेरे मिलन से के अतिरिक्त और दूसरा कुछ नहीं सुख सुख अपना देते, बस यही सुख देखते, उनका सुख इसमें है बस कृष्ण से मिलन। एक अत्यंत भूखे व्यक्ति को और प्यासे व्यक्ति को, भूख और प्यासे छटपट कर रहा, अभी पानी नहीं मिला अब प्राण आ गए हैं यहां तक, अब निकलने वाले, उसको संदेश जो ये पानी अभी आ रहा है, अब ये समझो जो पानी आई गया, ये संदेश उसको जीवित रखेगा कि नहीं, क्या समझा, जीवित रहेगा ना, कुछ खंड देख करके कहा ये हताश हो जाएगा, कब पानी आएगा, अब तो मैं मरा, वो आ गया टा गया जो कुछ बोलो, जब पानी आ जाएगा अपने आप पी लेगा, बस शांति आ जाएगी। तो कृष्ण उनके लिए पानी है, मेरे अतिरिक्त तो उनको कोई भी संदेश कोई भी संतना नहीं दे सकता, इसलिए नदृशु सुखाय, मेरे अतिरिक्त तो उस ऐसे बिगाड़ भाव में गोपियां हैं, मेरे वियोग में एक ऐसी स्थिति में, महाभाव की एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जो और कोई सुख कोई बात ही नहीं देती। अभी किसी का एक व्यक्ति का आदमी कोई मर जाए, एक दो दिन नहीं खाएंगे, कोई कहे जे देखो तुम्हारी पत्नी मर गई है, तुम सांत्वना रखो, तुम्हारे ये जो बेटे हैं उसकी धरोहर है, इसके पालन पोषण तो ये बच्चे मर जाएंगे, बच्चे तुम्हारे रो नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा, बच्चों की तरफ में देख रहा, जब बच्चे सिसक करके आएंगे रोते हुए पिताजी की गोदी में बैठ जाएंगे, तो उस समय में अपनी पत्नी का शोक कुछ भूल करके बच्चे की तरफ में देखेंगे कि नहीं, इसलिए इनका सुख है देखेंगे। किंतु गोपियों को कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी किसी वस्तु में कोई भी सुख नहीं है, बस कृष्ण मिलने की चाह है और कुछ नहीं। गया। और किसी चीज में उनका सुख की कोई भावना ही नहीं है। यह हेतु परम दृश्य विषय वियोग हैले अति तुच्छ विषय दर्शने चक्षु स्वभावत अप्रवृत्ति हो यथा अथवा हमारे समागम के व्यतीत हमारे साथ में मिलने के अतिरिक्त किसी दूसरे भी वस्तु में उनका सुख कर कुछ भाव ही नहीं होता। ये ही सुख देगा, कुछ नहीं होता। कुछ सुख कर वस्तु दृष्टिगोचर होने पर भी वो दुख रूप में ही दिखाई देते हैं। कुछ भी हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी अत्यंत सुखर ब्रजवास, गोवर्धन वास, राधा कुंड वास, कृष्ण ये सुखर विषय हैं, किंतु रूप गोस्वामी के वियोग में उनकी क्या दशा हो। गोवर्धन पर्वत को जिसके लिए वो आए वो अजगर सब की भांति देखते हैं, वो राधा कुंड बाघ के मुखड़ा जैसा दिख रहे हैं। कृष्ण की भी जरूरत नहीं, इस तरह से उनकी उस वियोग। बस क्या है, उस समय में यदि राधा जी का दास्य मिल जाए और रूप गोस्वामी ने रति मंजरी के दर्शन हो जाए तो बस वो सुखी हो सकते हैं, दूसरा नहीं। भजन मार्ग में भी इसी का ऐसा ही भाव हो, जो भजन के अतिरिक्तम और कोई सुख कर विषय नहीं है। जो कुछ मिले आपकी समान देखे, कोई चीज सुखर ना हो, किसी के साथ प्रीति नहीं। प्रीति होगो किसके साथ में, हमारे प्राप्त होने के जो अनुकूल जो चीज है, जैसे सदगुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, सद वैष्णवगण हैं, जो हमारे अनुकूल कुछ कर सकते हैं, बस इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। संसार के विषय जो हमारे लिए सुकर हैं वो विष के समान लगते हैं उनको। तो यदि ऐसा नहीं है तो सोचो जो अभी हम साधक नहीं हुए भक्ति राज्य के। और ऐसी स्थितियां हैं, पर संसार के जितने भी कठिन समस्याएं हैं अब रहती नहीं है भक्ति के बल से, सब कुछ अपने आप समाधान हो जाता है, कोई उनका विरोधी नहीं रह जाता। जैसे रूप गोस्वामी थे, उनका कोई समाज का कोई भी व्यक्ति उनका विरोधी हुआ नहीं, हुआ कोई भी विरोधी नहीं हुआ। सनातन गोस्वामी सब छोड़ छाड़ कर कोई विरोधी रहा नहीं, रहेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती का पहले कुछ था विरोध, किंतु जबकि आकर के जब ब्रज में भजन करने लगे तो जो विरोधी थे वो भी समझ करके अनुगत हो गए। उस समय कोई नहीं रहता कुछ, आसक्ति तक कुछ कुछ ये सब अनर्थ और विरोधी भाव लोगों के रह सकते हैं, इसके बाद में किसी का नहीं रह सकता। यदि कहो जी प्रहलाद महाराज को, द्रौपदी को, तो ये सिद्ध परिकर है एक तरह से। ये तो भक्तों को सिखलाने के लिए, ये सब उदाहरण के लिए ये दिखलाए। कहते हैं जेहेतु अमर विरह जनित परम दारुण दुख दुसहनी मनस्ता जहां देव तादर मध्य अमर प्रति बिगाढ़ भाव अर्थात अनुरागेर परवर्ती भूमिका रूढ़ भाव नामक महाभाव भेद विशेष हेतु वियोग हैले तादर तीव्र आधी। माने उस समय उस अवस्था में वियोग होने पर तीव्र आधी तारा मद विषय प्रेम भरे अमते निरंतर आसक्त चित्त उस दुख में भी बड़े आसक्त चित्त रहते हैं। इस जगत में ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई चीज हमको दुखकर होता है वियोग में, तो हम उसे छोड़ देते हैं। ये मुमताज को जानते हैं? मुमताज एक शाहजहां की किसी सेनापति या किसी अधिकारी की स्त्री थी, बड़ी सुंदरी थी। शाहजहां ने उसे देखा और उसके पति को मरवा दिया छल बलकल से, और उसको अपने पास में अपहरण करके ले आया। बड़ी दुखी थी, किंतु ताज पहना दिया राजरानी का, उसका दास बन गया, उसके लिए सब कुछ किया, अपने उस दुख को ये भूल गई, उसको दूर कर दिया। गोपियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनकी अत्यंत दुख की स्थिति में भी, दुख की स्थिति में भी हमारे प्रति आसक्त चित्त रहती हैं। हम लोग दुख की स्थिति में उसको भूल सकते हैं, दुख का चिंतन करेंगे। मान लिया कि एक सांप आया, एकदम काठी देने को था, उस समय कृष्ण की याद रहेगी तो, और यदि काट दिया तो याद रहेगी। ऐसे कोटि कोटि बीस उनको है, वियोग का बीस, और उस समय भी कृष्ण के प्रति अनुरक्त चित्त हैं। ये गोपियों को छोड़कर के और कहीं नहीं हो सकता। अथवा वो पूर्व से ही उनमें आसक्त थी, इसलिए उस समय भी उनकी आसक्ति कंटिन्यू होती है। इस प्रकार से दृढ़ भाव विशेष हेतु। मेरे मिलन के अतिरिक्त किसी वस्तु को सुख और रूप में नहीं देखती, यदि ऐसा समझो। ये गोपियां कैसी हैं? सर्वज्ञों के द्वारा पूजित है। सर्वज्ञ माने सनक सनातन इत्यादि हैं, नारद हैं, इन सब के द्वारा परिपूजित हैं। इस मनस्ताप में भी, मन के दुखी स्थिति में भी आपके प्रति कैसे उनका चित्त अनुरंजित रहता है, बड़े बड़े दुखों में भी कैसे अनुरक्त रहता है। हम लोग थोड़े से दुख में भी बिल बिला जाते हैं। हमने तो देखा है जैसे बहुत से लोग थोड़ा सा दुख आया और ठाकुर जी की मूर्ति उठा करके फेंक दिया, थोड़े से कष्ट में ही भगवत भक्ति कहां लुप्त हो जाती है। और थोड़ा सा कोई सुख और वस्तु मिलने से ही बस, एक आदमी हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं, इसमें से कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं, यदि टाटा बिरला वाले घर से आ जाए एक सुंदर लड़की को, जिसे देखो इसके साथ में तुम्हारी शादी कर देंगे और तुमको करोड़ों रुपए की संपत्ति तुम्हें दे देंगे और घर में मंदिर बना देंगे, ठाकुर जी राधा कृष्ण को रख देंगे और वहीं पर रख करके भजन करना, और गौड़ीय वैष्णव के जितने साहित्य है तुमको सबको वहीं उपलब्ध करा देंगे, क्या करेंगे? एक क्षण का विलंब नहीं होगा, एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। बड़े बड़े सन्यासी लोगों को भी मैं कहता हूं, वो लोग भी जी इतना अनुकूल विषय जो हम चाहते हैं यहां नहीं उपलब्ध है, ये तो बड़ी सुंदर बात है, सारी चीजें अनुकूल हो जाएंगी, तो ये सुख और वस्तु मिलने पर भी कृष्ण को भूल जाएंगे। और दुख कर विषय में तो बात ही क्या, थोड़ा सा दुख आने पर बिल बिला जाते हैं और उस समय में कृष्ण की स्मृति रहती। और इन गोपियों को समस्त विश्व का जितना कालकूट महाविष खाने से जो दुख है, इससे भी कोटि गुण यदि है उन गोपियों को दुख, उसमें कृष्ण को विस्मरण नहीं कर पाते, उनका चित्त उनमें, इसीलिए वो जीवित रहती हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं हमारे प्रति बिगाड़, अत्यंत अत्यंत गाढ़ा प्रेम अर्थात महाभाव। महाभाव में भी महामदनाख्य और मोहनाख्य भाव के विक्रम से सर्वज्ञ शिरोमणियों के चित्त को भी सर्वज्ञ शिरोमणि गणेर चित्तो अमाते अनुरंजित थैया था के। यदि ऐसा हो तो ऐसे गोपियों का चित्त हमारे में अनुरंजित रहता है एक क्षण के लिए इधर, और उसमें ऐसा रहता है कभी कभी बड़ी सुखी हो जाती हैं। गोपियां क्या हैं? उसी महा विगाढ़ भाव का मूर्ति स्वरूप है, मूर्तिमान से विग्रह है, महाभाव, महाभाव स्वरूप राधा ठाकुरानी प्रेमेर प्रेमेर सार महाभाव सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि महाभाव की स्वरूप है। अतः जिस प्रकार से वे उन्मादनी हो जाती हैं कृष्ण के वियोग में, और उसमें भी कभी कभी हंसती हैं, अपना श्रृंगार करती हैं, ये किसी के बुद्धि की बात नहीं है समझे, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त वो किसी प्रकार से भी सुखी नहीं होती। और मैं उन्हीं भावों के साथ में उनके साथ में विहार करता हूं, ये इस विषय को इंगित कर रहे हैं। जो गोपियां जो वियोग में होती हैं, ये मेरे द्वारा ही वियोग का भाव लाया जाता है। ये जो वियोग होता है कैसे, हम इनको वियोग की परिस्थिति में ला करके और इनके साथ में ही मैं उन भावों में उनके साथ में रमण करके और उनके तीव्र आदि को और बढ़ा देता हूं। किस लिए? उनके सुख के लिए। ये बड़ा भारी कठिन है, बहुत कठिन भाव। खुशी को सनातन गोस्वामी यहां पर बतला रहे हैं, और मैं भी उनके साथ उस तीव्रता व्याधि में वियोग में उनके साथ में विहार कर, कैसे खंच में देखा कृष्ण आ गए, हमारे आंखों को बंद कर लिया। सोचते हैं कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। ललिता देखिए, ललिता तो नहीं, विशाखा, विशाखा विषम, अंत में खिलखिला करके कृष्ण उनके सामने आकर के हंस दिए, देखकर के बड़ी खुशी। और थोड़ी देर में ही देखा क्या, कृष्ण नहीं। अब विरह में एकदम शांत, ये बिगाड़ भाव में। तो ये कृष्ण कहते हैं, मैं जो वहां पर जाता हूं, अब छिप जाता हूं और फिर उनकी तीव्र व्याधि को बढ़ा करके और फिर कभी कभी उनसे मिलन में उनके साथ में विहार करता हूं, उनको भी आस्वादन कराता हूं, अपने भी आस्वादन करता हूं उनके वियोग के भाव को। इसका देने वाला करने वाला इसका कारण एक मैं हूं। यदि ऐसा नहीं छिप जाता, ऐसा नहीं मिलता, तो उनको भी ऐसा नहीं मिलता। इसलिए न सुखाय, दूसरे को किसी को कारण नहीं देखा, क्या देखा, ये कृष्ण को ही, जो इनका वियोग का कारण है। इस वियोग में भी उनकी स्फूर्ति इत्यादि हो रही है, ये कृष्ण उनको ये संदेश दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आप लोग अभी संपूर्ण से नहीं समझेंगे, भजन करते 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 कुछ कुछ समझने की चेष्टा करेंगे। उनको नौनो भावते अनुभूत है, नौनो भावते नए नए रूप में कृष्ण अनुभव करते हैं और गोपियां भी अनुभव करती हैं। कृष्ण कैसे उस विरह की दशा में आते हैं, कैसे उनकी स्फूर्तियां होती हैं नौ नौ रूप में। यदि उनका वियोग नहीं होता तो ये चीजें सामने नहीं आती। इसलिए विप्रलम्भ भी महासुखमय है, समस्त सुखों के सिर पर नित्य करता है। यही मर्मे पराशर, पराशर जी ने इसीलिए कहा है, क्या कहा है, न तथा सह गोपी भी, स तथा सह गोपी भी रणाम मधुसूदन जथा अब्द कोटि प्रतिमा क्षणस्तेन बिना भवत। स तथा स गोपी भी रणाम मधुसूदन, वे जो कृष्ण मधुसूदन हैं, एक एक शब्द का अपना महत्व है। वे मधुसूदन कौन, गोपियों के मधुर प्रेम रूप मधु का आस्वादन करने वाले ने? ये गोपियों के साथ में रराम रमण किया, जथा अब्द कोटि प्रतिमा क्षणस्तेन बिना भवत। उनके एक क्षण के वियोग में उनको ऐसा मालूम है जो कोटि कोटि वर्ष बीत गए अभवत। इसी को सनातन गोस्वामी जी उद्धृत कर यहां पर बतला रहे हैं। मैत्रेय ऋषि के से ये कथन काल में अतीत काल की बात है, पराशर जी लिख रहे हैं। गोपी भी, गोपियों के द्वार, गोपियां शब्द का श्लेष के द्वारा ये प्रतिपन्न होता है। गो माने गोपी, गो और पी, गो प, गो माने इंद्रिय समूह, पांति इंद्रिय समूहों के विषय में जो पांति पालन करते हैं और रक्षा करते हैं, गोपयन्ति संरक्षयन्ति गोप्यः, जो उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अर्थात क्या, कृष्ण जिस शक्ति के प्रभाव से अखिल ब्रह्मांड में धारावाहिक उल्लास के द्वारा उच्छसित होते हैं कृष्ण, और जिनकी सहायता से, जिन शक्तियों की सहायता से उज्जवल प्रेम विशेष को वितरण करते हैं, जैसे महाप्रभु वितरण करें, कृष्ण ने भी वितरण किया। लताओं पताओं को कृष्ण के अतिरिक्त कौन प्रेम वितरण कर सकता था, उसका विस्तार करते हैं और प्रचार करते हैं। वो उनकी अपनी लादेन शक्ति स्वरूपा गोपीगण ही उनकी परमानंद संदोहमयी शक्तिमत्ता की रक्षा करने वाली ये गोपियां हैं, गोपियां जिनके इन चीजों की रक्षा करती हैं, विस्तार करती हैं, कृष्ण का साधन कराती हैं, इन्हीं का नाम है गोपियां, स्थापन करती हैं, वितरण करती हैं उस प्रेम को। अतएव एतादृश निज मोहंतर भावित द्वारा तादृश क्रीड़ा संपन्न हुई है, इसे गोपियों की सहायता के बिना कृष्ण ये रासलीला इत्यादि नहीं कर सकते। वियोग में जो बातें गोपी में होती हैं, यह नहीं होती है तो कृष्ण उसका आस्वादन नहीं कर सकते थे। ऐसे विरह दुख अधिकाधिक विस्तार कर दिया था कि यही शक्तियां वो विरह दुख को विस्तार करती हैं। कैसे, कृष्ण विस्तार किया, यदि ये मथुरा में नहीं जाते तो इनका विरह का दुख का विस्तार नहीं होता, वैसा विरह का दुख का विस्तार का कारण बने। भगवान इसीलिए विस्तार के लिए क्रीड़ा करते हैं, ऐसा जानना होगा। अतएव मधुसूदन, मधुसूदन माने भ्रमर, जिस प्रकार से पद्मिनी के सन्मुख उसका रस इत्यादि लेता है, उसी प्रकार से मधुसूदन भ्रमर के लिए प्रयोग हुआ, मधु फूलों से आहरण करता है, ऐसे कृष्ण रूप कृष्ण है ये गोपी रूपी मधु अर्थात प्रेम मधु सुख कारण सर्वस्व सुदन, सुखों का कारण और दूसरों सुखों का विषयों का प्रति जो सुख है उसको नष्ट कर प्रेम का आस्वादन करते हैं नए नए रूप से, वो मधुसूदन है। हे सखे, उद्धव को बतला रहे, हे सखे स्वभावत अमार स्वभाव ही रूप, हमारा स्वभाव ही ऐसा, क्या कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, कभी वियोग दिखलाते हैं और उनके दुखों को बढ़ाते। ये द्रौपदी को कौन ये दुख की व्यवस्था की जो उनका चीरहरण किया जाए, कृष्ण ने किया। गोपियों का इतना दुख हुआ तो आई जाते, आए क्यों नहीं, और दुख से दुख बढ़ाते 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 कहां तक ले गए, मोहन की अवस्था तक ले गए, और उसी अवस्था में स्फूर्ति के द्वारा उनसे मिलकर के उन सुखों का आस्वादन किया, और बीच बीच में गोपियों को भी आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए गोपियों का अतिरिक्त दूसरा कोई पात्र नहीं है जो कि जीवित रह सके, बस गोपियां ही जीवित रह सकती हैं और दूसरा कोई पात्र नहीं है। हम लोग को अभी थोड़ा सा दुख दे दें, हर भजन छोड़कर के चले जाएंगे, भाव वाले भक्त भी चले जाएंगे, किंतु भाव वाली भक्ति होने के बाद में कुछ बिल्व मंगल जैसे बनते हैं, अपनी आंखों को फोड़ करके उसमें सुख समझते हैं। परंतु हमारे ये माधुर्यमयी क्रीड़ा पश्चात, ये तो हुआ मिलन, किंतु हमारी ये जो माधुर्यमयी लीला के पश्चात परम आधि रूपे पर्यवसित हो गया था के यहां क्रीड़ा किया, इसके बाद में उनका वियोग हुआ। सवेरे भी गोपियों के साथ मिले, दोपहर को चले गए गऊ को चराने के, यहां पर प्रकट लीला में मथुरा और द्वारका चले गए। गोपियों के लिए आधि स्वरूप माने व्याधि स्वरूप हो जाती है। अभिप्राय हमारा परम रमणीय लीला, यह हमारी परम रमणीय लीला है, मैं गोपियों से एक क्षण के लिए वियुक्त नहीं होता, वियोग हमारा नहीं होता है। लीला के पश्चात यदि कहा रूप पक्षे परम आधि स्वरूप पर्यवसित है, तबे तहादेर की दोष प्रत्युत से ही दोष हमारी बोलीते हुए। यदि हम मिलन के बाद में फिर अलग हो जाते हैं, उस समय वे दुख की अनुभूति करती हैं, तो उनका दोष नहीं, किसका दोष? मैं ही दुख देख करके और नैन्य रूप से आस्वादन करने के लिए ऐसा कराता हूं, ये तात्पर्य। अतएव पूर्वे मदात्मिका, पहले भी जो श्लोक में जो अर्थ कर दिया गया मदात्मिका, अब उसका अर्थ का यहां पर दूसरा अर्थ और श्लोकों की संगीति के लिए ऐसा किया जा रहा है। पहला वाला अर्थ निरस्त हुआ, ने? वो क्या था मदात्मिका? तामन मनस का उनसे मिलूंगा, 140 है ना, तामन मनस का मत प्राणा मदर्थे तैक्त देह का जे तप्त लोक धर्मांश मदर्थे ताम विवर, उनका जो पालन करता हूं। डायरेक्ट रूप में इस अर्थ को बदल करके कहा, जैसे उनके दुख को आदि व्याधि को मैं ही बढ़ाता हूं और उनके साथ में रमण करता हूं, उनके साथ में विहार करता हूं, उनको नए नए रूपों में उनको भी अनुभूति कराता हूं और मैं भी करता हूं, ये अर्थ ले आएंगे। इसलिए तहां निरस्त, पहले का अर्थ जो मत चित्ता मत गत प्राणा ये कहा है, मैं उनकी आत्मा हूं और मेरे आत्मा अपने मन को रख देती है हमारे अंदर में, इसलिए वो बची हुई, नहीं तो कभी का उनका ये शरीर जल जाता। अब उस अर्थ को बेश दूसरा अर्थ ये बतला रहे, ये हेतु स्थले प्रतिपन्न है लो जे, यहां पर ये प्रमाणित हुआ कि तहारित तादृश तहादेरी तादृश मन पीड़ा, उनको ये मन पीड़ा हो रही है किंतु हमारा नहीं। पलका जब उनके दुख में मैं दुखी, सुख में सुखी हूं, अब इसको बदल दिया, हमारा कुछ नहीं, उनको मन पीड़ा शायद देखती है और उसी में मन पीड़ा देता हूं, किस लिए? और आस्वादन के लिए, उनको भी आस्वादन करने के लिए, अपने आस्वादन के लिए। इस प्रकार से परवर्ती श्लोक दोनों में भी अर्थ संगति करना होगा। परवर्ती श्लोक क्या है? तास्ताक्षपा प्रेष्ट तमेन नीता मये वृंदावन गोचरेण गोचरणे क्षणार्धवत्ता पुनरंगता संग हीना मया कल्प समा बबो। इस अर्थ में ये सबको पर्यवसित करना होगा, वैसे ही सोचना। अब इसकी जो विशेष विशेष बातें हैं, हम फिर से इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा समझाने की चेष्टा करेंगे, तब फिर आगे के श्लोक में बढ़ेंगे। गौ प्रमानंदी।